प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक धनी युवक से मिलते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये सुनते हैं कि ये एक धनी व्यक्ति है और युवक है, हम खुश हो जाते हैं। युवावस्था हमारे जीवन के विभिन्न समयों के बीच सबसे अच्छा समय होता है, युवावस्था। जब हम बच्चे होते हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, विचार विमर्श करने में, वाद विवाद करने में हम पीछे हटते हैं। बड़े लोग भी जब विचार विमर्श करेंगे, बच्चों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको विचार विमर्श करना नहीं आता, यानी उनका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं है, उनका शरीर भी पूरी तरह विकसित नहीं है। और जब बूढ़े होते हैं, हम जानते हैं बुढ़ापे में फिर से लोग एक प्रकार से जिंदगी के रात की ओर बढ़ने वाले होते हैं, यानी उनके अंदर भी इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन जवान लोग बहुत ताकत रखते हैं, युवक लोग बहुत ताकत रखते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए युवावस्था ताकत से भरी रहती है। और ये धनी, जब युवावस्था में कोई धनी बनता है तो उसके सामने बहुत सारी बहुत सारे अवसर आते हैं, बहुत सारे मौके आते हैं और बहुत सारी संभावनाएं होती है, बहुत कुछ संभव कर सकते हैं। कई युवक कहते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता वो करता ये सब। लेकिन ये जो युवक, जो धनी युवक प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से एक प्रश्न भी करते हैं कि भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा भला कार्य करना चाहिए, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, सवाल भी बहुत अच्छा है। ये सवाल हमें यह बताता है कि ये जो युवक जो है, धनी युवक जो है, अपने जीवन में अनंत जीवन हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और जब इसका प्रश्न कोई भी सुन लेता है, उनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर जो कामना है, अभिलाषा है, बहुत अच्छी है। प्रभु के सामने आकर प्रश्न करते हैं तो प्रभु उनको समझाते हैं, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन। तो प्रभु से ये कह देते हैं, ये युवक कह देता है, मैं सब कुछ करता हूँ, ये सब इन सब आज्ञाओं का पालन करता हूँ। तब प्रभु के समझ में आया कि इसने इन आज्ञाओं को ठीक से नहीं समझा है, इसीलिए तो बोल सकता है कि मैंने सब आज्ञाओं का पालन किया है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सभी आज्ञाओं का पालन कर सकता है पूरी तरह? संदियोहन हमसे कहेंगे कि इस दुनिया में सभी लोग पापी हैं। पापी कौन है? पापी वह है जिसने आज्ञाओं का भंग किया हो, आज्ञाओं का उल्लंघन किया हो। तो सभी लोग पापी हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने आज्ञाओं का पूरी तरह पालन किया? तो प्रभु के समझ में आया कि इसको मालूम नहीं है कि आज्ञाओं का मतलब क्या है। तो प्रभु आगे उनके अंतरतम की बातों को धार लेकर प्रभु बोलने लगते हैं कि तुम्हें एक कमी है, तुम्हारे जीवन में एक कमी है। अगर तुम पूर्ण बनना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति को बेच डालो, गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। अगर प्रभु की आज्ञा हमें यह समझाता है कि हमें दूसरों को, पड़ोसी को अपने समान प्यार करना चाहिए, पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास संपत्ति है, जितना मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ उतना ही मेरे पड़ोसी के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। अगर ऐसा करता हूँ तो मेरी संपत्ति मेरी नहीं रहेगी, मैं गरीबों के बीच में भी मेरी संपत्ति बांट दूंगा। तो इसने ठीक से इन आज्ञाओं को नहीं समझा था। जब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हें अपनी संपत्ति को बेच कर गरीबों को देना चाहिए, पैतृकंद कहता है वो उदास होकर चला जाता है, क्योंकि वह बहुत धनी था, क्योंकि उसने सुसमाचार का मूल्य नहीं समझा था। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु कई लोगों को धन्य घोषित करते हैं, कई लोगों को धन्य घोषित करते हैं, और जिसको हम आशीर्वचन कहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5, जब प्रभु लोगों को धन्य घोषित करने लगते हैं, सबसे पहले प्रभु गरीबों को धन्य घोषित करते हैं, गरीबों को धन्य घोषित। ये समझना बहुत मुश्किल है, कोई गरीब से इसे सुन लेगा तो वो बोलेगा ये कैसी बातें करते हैं। इसीलिए हम सुसमाचार को एक रहस्य मानते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 में हम ईश्वर को अपने रहस्यों को प्रकट करते हुए पाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 में जब ईश्वर इब्राहिम को दर्शन देकर उनको धन्य घोषित करते हैं, इब्राहिम को धन्य घोषित करते हैं, तो इब्राहिम बोलने लगते हैं कि मैं कहाँ का धन्य हूँ, मेरा एक बच्चा भी नहीं है। जिस आदमी का कोई बच्चा भी नहीं है, 75 साल की उम्र है उसकी, तब भी कोई बच्चा नहीं है, तो वो धन्य कैसे बन सकता है, ये प्रश्न उठता है। लेकिन ईश्वर का वचन जो है, ईश्वर का वचन रहस्यों को प्रकट करने वाला वचन होता है। न्यायकर्ता के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम दोबारा इसी प्रकार के ईश्वर को पाते हैं, जब ईश्वर गिदेयोन के पास आकर गिदेयोन से कहते हैं तुम धन्य हो, तो गिदेयोन भी पूछने लगता है मैं कैसे धन्य हूँ, मैं डर के मारे यहाँ पर चुपके से काम कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं, ये सोच कर कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चलता है तो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए वो आ जाएगा। शत्रुओं के डर से भीतर रहने वाले एक व्यक्ति के सामने ईश्वर कहते हैं तुम धन्य हो, वो भी नहीं समझ पाता कि इसका मतलब क्या है। इसी प्रकार जब लोगों को ये बताया जाता है कि गरीब लोग धन्य है, तो वो लोग इंसान नहीं समझ पाएंगे, इतनी तंगाली में रहने वाले हम धन्य कैसे हो सकते हैं। लेकिन यह सच्चाई है, ईश्वर के निगूढ़ रहस्यों को समझने वाले मनुष्य समझ सकता है। इब्राहिम को बाद में समझ में आया कि वास्तव में वो धन्य थे, और गिदेयोन को भी बाद में समझ में आया, डरे समय रहने के बावजूद भी ईश्वर ने अगर किसी को घोषित कर दिया धन्य, तो वो धन्य ही होंगे। संपत्ति से हम धन्य नहीं हो सकते हैं, इस दुनियावी संपत्ति से हम धन्य नहीं हो सकते हैं, इस दुनिया की संपत्तियों से हम धन्य नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में तिमत्ती को लिखते हुए अपने पहले पत्र में संत पौलुस समझाते हैं। संत पौलुस तिमत्ती को लिखते हुए अपने पहले पत्र में अध्याय 6 वाक्य 9 में कहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं, और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। हम जानते हैं प्रभु यीशु कई दृष्टांत सुनाते हैं, और उसमें एक दृष्टांत है धनी और लाजरस का दृष्टांत। हम जानते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार वो धनी व्यक्ति बेवकूफ बनता है, अपने दरवाजे पर अपने फाटक पर वो कंगाल लाजरस पड़ा रहता है लेकिन उसके ऊपर दया नहीं दिखाता। तो इसी प्रकार वो मूर्ख बनता है। दूसरी जगह पर दूसरा एक दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं जिसका शीर्ष ही मूर्ख धनी है, जो बहुत अनाज पाता है तो कहता है मैं ये सब अनाज भंडारों में जमा करके कई सालों तक खुशी से रहूँगा। लेकिन प्रभु प्रश्न करते हैं अगर तुमसे तुम्हारी आत्मा आज मैं ले लूँ तो तुम्हारा ये सब कहाँ जाएगा, तुम्हारा ये सब कहाँ जाएगा। तो धन्य वही होता है जो निर्धन होते हैं, निर्धनता को अपनाते हैं, वही है धन्य। और इसी प्रकार याकूब के पत्र के अध्याय 5 में भी संत याकूब इस बात को समझते हुए लोगों को समझाने लगते हैं और धनियों को चेतावनी देते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 शुरुआत में ही संत याकूब कहते हैं धनियों मेरी बात सुनो, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं, आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं, इसलिए आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए। और आगे कहते हैं आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी सहेली के पास 100 से ज़्यादा साड़ी है। अगर किसी के पास 100 से ज़्यादा साड़ी है, 100 भी कम है, किसी किसी के पास 300-400 साड़ियाँ भी हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास करीब 60 जोड़े जूते थे, 60 जोड़े जूते, 60 जोड़े जूते वो कहाँ कब पहनेगा। और इसी प्रकार उसी व्यक्ति के पास मैंने करीब 2 दर्जन कोट देखा, कोट जो ऊपर से पहनते हैं, गर्मियों में नहीं पहन सकता है और बरसात में नहीं पहन पाएगा, कुछ दिन साल भर में पहन पाएगा, ज़्यादातर ठंड के मौसम में। 2 दर्जन कोट, 60 जोड़े जूते, ये सब किस काम का है। आज के दिन प्रभु हमसे भी कहते हैं जिस चीज़ का आप उपयोग नहीं करते हैं रोज, उस चीज़ को आप मत रखिए। धनी बनना धन्य बनने का रास्ता नहीं है, निर्धनता ही धन्य बनने का रास्ता है। इसलिए प्रभु हमसे चाहते हैं हम उदास होकर नहीं, खुशी के साथ जिए। उस युवक के बारे में, धनी युवक के बारे में पवित्र ग्रंथ कहता है वह उदास होकर चला गया। जब वो आ रहा था एक प्रकार से वहां पर एक आशावान वातावरण छाया हुआ था, धनी युवक कितनी आशा होती है। लेकिन जब वो वापस जा रहा था प्रभु के पास से, वो सब आशा निराशा में बदल गया। प्रभु के पास हम बार बार आते हैं बहुत उम्मीद लेकर, आशा लेकर, लेकिन पवित्र वचन सुनने के बाद हमें क्या लगता है, हम उसी आशा को बनाए रखते हैं या निराश होकर चले जाते हैं। हमारे दिल को जांच करने का अवसर है। प्रभु से कहिए, हे प्रभु, तेरे वचन मेरे पैरों के लिए ज्योति बने, ताकि मैं अपने राह को सही ढंग से देख सकूं।